ये आकाशवाणी है। अब आप अंजलि से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में विमानन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इससे लोगों को यात्रा में आसानी हो रही है और कनेक्टिविटी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और विमानन क्षेत्र इस मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देश में लगभग 15% पायलट महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब एयर टैक्सी से यात्रा करना वास्तविकता बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी आधारित जैविक क्रांति के युग की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में वैश्विक जैविक भारत सम्मेलन में उन्होंने कहा, जिस तरह एक समय में पश्चिमी देशों पर सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रभाव था, उसी तरह आज भारत को भी जैविक क्रांति से गुजरना पड़ रहा है। डॉ सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक आयोजन है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की यात्रा से अब तक रूसी सेना से 35 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल कहा कि अब भी रूसी सेना में करीब 50 भारतीय नागरिक हैं और भारत उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। भारत ने कल ओडिशा तट पर मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेश में निर्मित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का कल दोपहर ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से परीक्षण किया गया। ये युद्धपोत पर लगाए जाने वाली हथियार प्रणाली है और समुद्री लक्ष्यों सहित नजदीकी सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को नाकाम करने के लिए डिजाइन की गई है। जम्मू और कश्मीर में 7 जिलों में 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 483 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जहां विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे और अंतिम चरण में मतदान होगा। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया कि अगले महीने की पहली तारीख को होने वाले इस चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। जम्मू जिले में 122 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद बारामूला जिले में 111, कुपवाड़ा जिले में 80, बांदीपोरा जिले में 50, कठुआ जिले में 47, उधमपुर जिले में 40 और सांभा जिले में 33 उम्मीदवार हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर मॉनसून का दबाव धीरे धीरे उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश होगी। वियतनाम में यागी तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 226 हो गई है और कल शाम तक 100 से अधिक लोग लापता हैं। तूफान से सबसे बुरी तरह से प्रभावित प्रांत लाओ काई में 98 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें न्यू गांव में अचानक आई बाढ़ से 47 लोग शामिल हैं। वहीं अन्य 81 लोग लापता हैं। काओ बैंग, येनबाई और क्वांग नी में भी मौतें होने की खबर है। खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रभावित लोगों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचाई जा रही है। एशिया में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून यागी के कारण भारी बारिश और तेज हवाएं चलने से एक पुल ढह गया। तूफान ने उत्तरी थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और चीन को भी प्रभावित किया और काफी नुकसान की खबर है। थाईलैंड में लगभग 9,000 घर प्रभावित हुए। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और स्टीपलचेज धावक अविनाश साबले आज से बेल्जियम की ब्रसेल्स में शुरू होने वाले 2024 डायमंड लीग फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एलियास मेमोरियल वैनडेम में इस साल के डायमंड लीग के अंतिम आयोजन में शीर्ष एथलीटों को उनकी प्रतिस्पर्धाओं में जीत के लिए संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। आज पहले दिन भारतीय स्टीपलचेज धावक अविनाश साबले डायमंड लीग फाइनल में पदार्पण करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।